तारा परी को करिश्मा और अमन के राज जानने थे। इसके लिए उसे अमन का अतीत जानना था। इसलिए उसने परी लोक से अपनी एक दोस्त को बुलाया, जिसका नाम सोनल परी था। सोनल परी किसी के भी अतीत के बारे में आसानी से बता सकती थी, लेकिन परी लोक में पृथ्वी लोक पर अगर तारा परी को किसी का अतीत जानना था तो उसे उस इंसान के बाल या नाखून लाकर देने होते थे, तभी सोनल परी उस इंसान का अतीत बता सकती थी। तारा परी अमन के बाल लेने के लिए उसके कमरे की ओर चल दी थी। तारा परी छिपते छिपाते अमन के कमरे की ओर बढ़ रही थी। वो अभी उसके कमरे में अंदर जाने ही वाली थी कि तभी करिश्मा वहां आ गई। वो तारा परी पर चिल्लाकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के कमरे में जाने की? क्या करने जा रही थी तुम? मुझे तुम पर पहले से ही शक था। तुम जरूर किसी ना किसी इरादे से इस घर में आई हो। अभी भी तुम जरूर चोरी करने मेरे बेटे के कमरे में जा रही थी, करिश्मा जो मुंह में आ रहा था वो बोल रही थी। तारा परी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मुश्किल से निकले। वो करिश्मा को समझाने की कोशिश करती रही और बोली, मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो अमन सर के कमरे में किसी काम से जा रही थी। तब करिश्मा बोली, ओ अच्छा, अब तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो तो बहाने बना रही हो। तुम ठहरो, मैं अभी अमन को फोन करके बुलाती हूँ, वही तुम्हारी खबर लेगा और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालेगा। इतना कहकर करिश्मा ने अमन को तुरंत फोन कर दिया। तारा परी को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसने मन ही मन सोनल परी से मदद मांगी। सोनल परी जल्दी से गायब होकर अमन के कमरे में चली गई। उसने तारा परी का कुछ सामान वहां गिरा दिया और मन ही मन तारा परी को सब कुछ समझा दिया था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी अमन वहां आ पहुंचा। वो करिश्मा के पास पहुंचकर बोला, क्या हुआ मॉम, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपने मुझे जल्द से जल्द बुला लिया? क्या हुआ था, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी। अब आप कुछ बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? तभी करिश्मा जी अमन के आते ही फट पड़ी और बोली, तुझे पता है आज क्या हुआ है? करिश्मा ने तारा परी की ओर उंगली करते हुए कहा, इस लड़की को मैंने चोरी छिपे तेरे कमरे में जाते हुए पकड़ा है। ये जरूर किसी न किसी गलत इरादे से इस घर में आई है। तेरे कमरे में जाने के पीछे जरूर इसका कोई मकसद था। अमन करिश्मा की बात सुनकर तारा परी के पास गया और बोला, मॉम क्या कह रही है, तुम मेरे कमरे में क्यों जा रही थी? तब तारा परी ने कहा, सर मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अमन ने एक नज़र अपनी माँ की ओर देखा और थोड़ा नरम होते हुए बोला, तो आप मुझे पूरी बात बताइए, आखिर हुआ क्या था? तब तारा परी ने उन दोनों माँ बेटे पर एक नज़र डाली। हाँ ये सच है कि मैं आपके कमरे में जा रही थी, लेकिन मेरा कल रात मेरा कुछ सामान आपके कमरे में गिर गया था, मैं बस वही लेने जा रही थी, तारा परी ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। आपका सामान मेरे कमरे में? अमन ने सवालिया लहजे में कहा। तारा परी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, लेकिन अब वो पकड़ी गई थी तो कुछ ना कुछ तो उसे करना ही था, तो वो थोड़ा तेज लहजे में बोली, सर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चलिए और खुद ही देख लीजिए। अमन ने एक नज़र तारा परी को देखा और फिर अपनी माँ की ओर देखने लगा। करिश्मा जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर वे तीनों अमन के कमरे में जाने लगे। करिश्मा जी को तो पूरा यकीन था कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये लड़की झूठ बोल रही है। वहीं अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे किस पर नहीं। अमन ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और करिश्मा जी और तारा परी को लेकर अंदर गया। तारा परी ने कहा, सर हो ना हो मेरे कान का एक झुमका ज़रूर यहीं गिरा होगा। करिश्मा हैरानी से तारा परी को देखने लगी और बोली, तुम कहना क्या चाहती हो भला, तेरा झुमका मेरे बेटे के कमरे में क्यों गिरा होगा? करिश्मा जी की बातों के पीछे का मतलब निकालकर तारा परी झेप गई और बोली, नहीं मैम आप गलत समझ रही हैं, वो क्या है ना, मैं कल सर को जरूरी फाइल देने आई थी जो ऑफिस में मेरे पास रह गई थी, और तब शायद मेरा वो झुमका यहाँ गिर गया होगा, तारा परी ने अमन से नजर चुराते हुए कहा। तभी करिश्मा जी चिढ़कर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है तुम दिखाओ जरा अपना झुमका, और हाँ याद रहे अगर तुम्हारा झुमका यहाँ नहीं मिला तो हम लोग समझ जाएंगे कि तुम चोरी करने के इरादे से ही इस घर में आई हो। तभी वे तीनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन कहीं भी झुमका नहीं मिला। तारा परी को मन ही मन सोनल परी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने झुमका रखा भी है या नहीं इस कमरे में। तभी उसकी नज़र अमन के बेड पर पड़ी और उसने देखा अमन की बेडशीट में उसका झुमका फंसा था। तारा परी मन ही मन गुस्सा हो गई थी और सोनल परी को मन ही मन डांटने लगी थी, तू पागल हो गई है, तुझे और जगह नहीं मिली थी क्या झुमका रखने की? सोनल ने जवाब दिया, अरे क्या हुआ, सोचने तो उसकी माँ को जो भी वो सोचे, हो सकता है वो आज इतना ज्यादा सोच ले कि आज ही तेरी शादी अमन सिंह राठौर से करा दे। ऐसा कहकर सोनल परी हंसने लगी थी, जिसे तारा परी बहुत चिढ़कर रह गई। तारा परी बोली, चुप कर अपनी बकवास, तू रुक, तुझे तो मैं कमरे में आकर सबक सिखाऊंगी। तभी करिश्मा जी की नज़र भी उस झुमके पर पड़ गई और उन्होंने एक झटके में वो झुमका उठा लिया और अमन की ओर दिखाते हुए बोली, इस लड़की का झुमका तेरे बेड में क्या कर रहा है? अमन अब बिचल चुका था और उसे याद आया था कि कैसे वो तारापरी के ऊपर गिर गया था और उन दोनों के बीच एक किस भी हुआ था। अमन अपना सिर खजाने लगा और शर्माकर तारापरी की ओर देखने लगा। तारापरी आगे बढ़ी और उसने करिश्मा जी के हाथ से अपना झुमका ले लिया और बोली, मैडम मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ, सो आइंदा किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। करिश्मा को अच्छे से लटाड़ कर और अमन पर गहरी नजर डालती हुई तारापरी उस कमरे से निकल गई और सीधा अपने कमरे में चली गई थी और चैन की सांस लेने लगी और सोनल परी से बोली, इंसान बनना कितना मुश्किल काम है, उफ। ऐसा कहकर वो अपने माथे पर आए पसीनों को पोंछने लगी और तभी सोनल ने उसे पानी का एक ग्लास दिया जिसे उसने एक झटके में ही खत्म कर दिया। वो एक सांस में ही सारा पानी पी गई। अभी वो सोनल को उस झुमके के लिए डांटने ही वाली थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा अमन सिंह राठौर सामने खड़ा था। सोनल परी जल्दी से अदृश्य हो गई और तारापरी चौंक कर खड़ी हो गई। तब अमन उसके करीब आया और बोला, मैं जानता हूँ मॉम की बातों का तुम्हें बहुत बुरा लगा है, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे उनकी तरफ से माफी मांगने आया हूँ। देखो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे रहने का कहीं ना कहीं जुगाड़ करा दूंगा। जगह तो बहुत सी मिल रही है लेकिन वो अभी तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि ऐसी जगहों पर एक अकेली लड़की नहीं रह सकती है। तारापरी ने कहा, रहने दीजिए सर, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और रही बात मेरे रहने का इंतजाम करने की तो वो मैं खुद बखुद कर लूंगी, आपको मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सर ये इल्जाम लगना, चोरी चकारी या कुछ और, ये सब तो हम जैसे गरीबों के साथ होता रहता है, सो आज कुछ नया तो नहीं हुआ है ना, तो आप क्यों बेकार में माफी मांगकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
तारापरी ने अमन को काफी हद तक करिश्मा की बातों को लेकर जलील कर दिया था। सोनल परी जो कि अदृश्य होकर वहीं थी, वो मन ही मन तारापरी से बोली, बस कर मेरी गरीब परी, बस कर, अब काफी ओवर रिएक्ट कर रही है तू, और कितना सुनाएगी बेचारे को, शक्ल देख उसकी। तारापरी मन ही मन सोनल परी से बोली, बोलने देना, अच्छा लग रहा है, और कितने दिन हो गए हैं इस तरह से मैंने किसी को डांटा भी नहीं है। तब तारापरी ने आगे बोलना शुरू किया और बोली, अमन सर, आप या आपकी मॉम कोई पहले इंसान नहीं हो जिन्होंने ऐसा सोचा है, इस तरह से तो हर दूसरा अमीर आदमी सोचता है हर एक गरीब के लिए। तारापरी ने अपनी बातों से खुद को बहुत गरीब, लाचार और बेबस दिखाया था, जिसे सुनकर न जाने अमन को क्या हुआ और उसने अपनी उंगली तारापरी के होठ पर रख दी। अमन की उंगली रखते ही तारापरी बिल्कुल खामोश हो गई और उसे एकटक निहारने लगी। वे दोनों एक दूसरे को कितनी देर तक ऐसे ही देखते रहे और जिस पल अमन की उंगलियों ने तारापरी के होठ को छुआ था, उसी पल से उसके शरीर में एक अजीब तरह की कंपकंपी सी छूट गई थी और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और वो सीधा अमन के गले लग गई थी। अमन के गले लगते ही तारापरी और अमन एक दूसरे में खोसे गए थे और इतनी खूबसूरत लड़की को अपने इतने करीब पाकर अमन अपने होश खो रहा था। आखिर थी तो वो उसकी मोहब्बत ही। अमन ने जिस दिन तारापरी को पहली बार देखा था, वो तभी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन वो उसे खुद से दूर रखने की हर पल कोशिश करता रहा था, लेकिन वो जितना उससे दूर जाता, वो उसके उतना करीब आती गई। अमन नहीं चाहता था कि एक जिन का साया इस प्यारी सी लड़की के साथ जुड़े। अमन जितनी बार उससे दूर जाता, वो उसके और करीब आती चली गई थी और अब तारापरी को इतने करीब पाकर वो बेचैन सा उठा था और तारापरी के जिस्म से निकलती हुई भीनी भीनी सी खुशबू उसके होश उड़ा रही थी। अमन अब बेकाबू हो चुका था और उसने तारापरी की कमर पर अपने दोनों हाथों की पकड़ और मजबूत कर ली और मदहोश होकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा था। अमन के लिप्स कुछ ही पलों में उसकी पूरी सुराही जैसी गर्दन पर फिरने लगे थे और तारापरी के हाथ उसके बालों में घूमने लगे थे, जिससे अमन के कुछ बाल टूटकर तारापरी के हाथों में आ चुके थे। तारापरी का काम हो चुका था, अब तो बस उसे अमन को खुद से दूर करना था क्योंकि अमन से शादी के बिना वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकती थी।